हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनुराधा ने एक तरफ शमशेर सिंह को किडनैप करवा लिया था और दूसरी ओर अरमान को भी बेहोश करके अपने कब्जे में कर लिया था। वही राजवीर शमशेर की लोकेशन ट्रेस करता हुआ अनुराधा की ही एक साइट पर पहुंच चुका था। राजवीर को किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा था, सो उसने किसी तरह का रिस्क ना लेते हुए अपनी बैकअप टीम को बुला लिया था और उस साइट पर रेड करने की तैयारी करने लगा था। अबीर, जोया। वही दूसरी ओर जैसे ही अबीर जोया को किस करने जा रहा था, जोया ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया था। अबीर को एहसास हो गया था कि उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी थी। वो जल्दी से वापस जोया के पास गया और बोला, ओ सो सॉरी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। प्लीज तुम चलो मेरे साथ और तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे भाई के दुश्मन को बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। तब जोया, देखो मैं तुम्हारे यहाँ रहने के लिए चल तो रही हूँ, लेकिन तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मुझसे कम से कम 10 मीटर की दूरी बनाकर रखना। अबीर, मन ही मन आपके इस एटीट्यूड पर ही तो हम मर मिटे थे, और वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी जोया ने कहा, एक और बात, वो जिसे तुम ढूंढने की बात कर रहे हो वो मेरे भाई का नहीं बल्कि मेरा दुश्मन है। जोया ये कहकर वहाँ से जाने लगी और अबीर सोचता रह गया कि आखिर जोया की बातों का क्या मतलब था। फिर वो अपना सिर झटक कर जोया के पीछे पीछे चल दिया। जोया जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी और ये देखकर हैरान थी कि वो जहाँ से भी गुजर रही थी सभी आदमी अपना सर झुका रहे थे। जोया हैरानी के साथ देख रही थी और वो सोचती हुई हॉस्पिटल के गेट के सामने खड़ी एक शानदार गाड़ी में जा बैठी थी। उसने देखा अकरम और रिया तो उसमें थे ही नहीं। तभी उसने उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछा था, हेलो ड्राइवर भैया, मेरे भाई और भाभी कहाँ पर हैं? उस ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खामोशी से बैठा रहा। जोया सुलग कर रह गई और उस गाड़ी में से उतरने के लिए उसने जैसे ही गाड़ी के गेट को खोलने की कोशिश की, तभी गाड़ी का दरवाजा खोलकर अबीर राठौड़ वहां आ बैठा था और जोया सिमट कर पीछे हो गई और माथे पर त्योरियां डालकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब अबीर, व्हाट यू मीन्स, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? घर जा रहा हूँ। जोया उसके जवाब पर और तप गई और बोली, मेरा मतलब था तुम इस गाड़ी में क्या कर रहे हो? अबीर, उफ कितने सवाल करते हो तुम, मैंने कहा ना इस गाड़ी में बैठकर घर जा रहा हूँ। जोया किलस कर रह गई और मुंह फुलाकर बिना कुछ बोले बिल्कुल गाड़ी की खिड़की से चिपक कर बैठ गई। अबीर मुस्कुराकर उसे देखने लगा था। अबीर ने कहा, ड्राइवर गाड़ी चलाओ। अबीर के हुक्म देते ही गाड़ी सड़कों पर दौड़ने लगी थी। अबीर राठौड़ का काफिला जब भी सड़क पर चलता था तब पूरी सड़क खाली करा दी जाती थी। अबीर बार बार चोर नजरों से जोया को देख रहा था। जोया के गाल गुस्से की वजह से एकदम लाल लाल हो गए थे। अबीर को वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अबीर का जी चाह रहा था कि वो उसे जाकर चूम ले, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल किए हुए बैठा रहा था। वो अभी जोया को छेड़कर उसका मूड खराब नहीं करना चाहता था, कहीं वो उसके घर जाने से मना ही ना कर दे। ये सोचकर अबीर अपने आप पर कंट्रोल किए हुए बैठा रहा था और गाड़ी की सीट पर अपने दोनों हाथ बांधकर बड़े ही प्यार से उसे घूरने लगा था। जोया को अबीर की आंखों की तपिश से उलझन होने लगी थी। वही दूसरी ओर राजवीर अपनी पूरी टीम के साथ अनुराधा की साइट पर रेड कर चुका था और जब वो लोग उसमें अंदर गए उन्होंने देखा एक बिल्कुल काला आदमी दारू की बोतल के साथ पड़ा हुआ था। उसने शायद कुछ ज्यादा ही पी ली थी, उसे किसी भी चीज का कोई होश नहीं था। राजवीर उस अफ्रीकी को देखते ही पहचान गया था कि ये तो वही अफ्रीकी था जो उस रात होटल में अनुराधा के साथ था। राजवीर उसे वहाँ देखकर बड़े ही सकते में था और जब उसे एक कांच के टूटे हुए केबिन में आधी बेहोशी में शमशेर दिखाई दिए, वो जल्दी से दौड़कर उनके पास गया और बोलने लगा, अंकल अंकल आप ठीक तो है ना? राजवीर ने जल्दी से उनके हाथ पांव खोल दिए थे और अपनी टीम को इशारा करके उस फिरंगी को अरेस्ट कर लिया और शमशेर सिंह को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले आया था। शमशेर सिंह जी काफी कमजोर हो गए थे, उनको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया और ग्लूकोज की बोतल लगा दी गई थी। धीरे धीरे शमशेर सिंह जी स्टेबल होने लगे थे और जल्दी ही उन्हें पूरी तरह से होश आ गया था और वो राजवीर को देखकर मुस्कुरा रहे थे और बोले, इतना समय क्यों लगा दिया था आने में? शमशेर की बात सुनकर राजवीर अपना सिर खुजाने लगा था। अब वो ये कैसे बताए कि जिस वक्त आपने लोकेशन भेजी थी उस वक्त वो एक लड़की को नोच रहा था, उसके जिस्म से खेल रहा था। राजवीर ने मेहर की ओर अपनी शादी की बात शमशेर सिंह जी से छुपा कर रखी थी। वहीं दूसरी ओर अनुराधा बेहोश पड़े हुए अरमान को देख रही थी और उसने अपनी उंगली उसके चेस्ट, नेक और फेस पर चलानी शुरू कर दी थी। वो उसे बेहद प्यार से देख रही थी और बोली, आज तक न जाने कितने आदमियों ने मेरा जिस्म छुआ था, लेकिन जब से तुझे देखा किसी और की तरफ को देखने का मन ही नहीं किया। अरमान अभी बेहोश था, उसे नहीं पता था उसके साथ क्या हो चुका था और धीरे धीरे अरमान को होश आ रहा था और जैसे ही उसने अपना हाथ उठाकर अपने माथे पर रखने की कोशिश की, वो नहीं रख पाया क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। अरमान की हैरानी का ठिकाना न रहा था और उसने अपनी प्रॉपर आंखें खोल ली थीं और जब उसने अपनी सिचुएशन महसूस की तो हैरानी की वजह से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। अपने आप को नंगा देखकर उसे आज पहली बार शर्म सी महसूस हो रही थी और वो तेज तेज चिल्लाने लगा, कौन है वहाँ, किसको इतनी हिम्मत जो अरमान ठाकुर पर हाथ डाला, जान से मार डालूंगा, सामने आओ, कोई है यहाँ, किसी को आवाज आ रही है मेरी। अनुराधा तब बाथरूम में थी और अरमान की आवाज उसे भली भांति सुनाई दे रही थी, लेकिन वो जानबूझकर अनसुना करती रही और जब कितनी देर तक अरमान की आवाज आती रही, फिर करीब 20 मिनट बाद अनुराधा बाथरूम से निकली। उसने डार्क रेड कलर की शॉर्ट नाइटी पहन रखी थी। अरमान उसे देखकर चौंक गया और बोलने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो क्या तूने मुझे किडनैप किया है, तेरी इतनी हिम्मत, शायद तू जानती नहीं कि अरमान ठाकुर कौन है। अनुराधा बड़े ही नजाकत से चलती हुई अरमान के पास आई और अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख दी थीं। अरमान गुस्से से उसे घूरने लगा था। तब अनुराधा, इतनी भी क्या जल्दी है अरमान साहब, अभी तो हम लोगों के पास न जाने कितनी रातें और दिन बाकी हैं, क्यों नाराज होते हैं आप, मैंने तो आपको जन्नत की सैर कराने के लिए किडनैप किया है। वैसे मानना पड़ेगा अरमान साहब, बड़े किस्मत वाले हैं आप जो इस तरह से एक खूबसूरत लड़की के साथ है। अरमान, अपनी बकवास बंद कर, यू बीच। अभी अरमान उसे और कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी अनुराधा ने अपने होठों को अरमान के होठों पर रख दिया और वो उसे पैशनेटली किस करने लगी थी। अरमान उससे छुड़ने के लिए छटपटा रहा था, लेकिन अनुराधा लगातार उसे किस करती रही थी और उसने पूरे 40 मिनट के बाद उसके होठों को छोड़ा था। अरमान, छोड़ दे मुझे, मेरे हाथ खोल दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
अनुराधा, क्या अरमान साहब, ये लाइन तो मेरी होनी चाहिए और यहाँ आप किसी लड़की की तरह खुद को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो अरमान की नग्न चेस्ट पर जा बैठी थी और अपनी जीप से वो अरमान की चेस्ट नेक को लेक करने लगी थी। अरमान भी धीरे धीरे अब अपने होश खोने लगा था और आनंद के मारे उसकी आंखें ऑटोमैटिक बंद होती चली गई थीं। अनुराधा अरमान को देखकर स्माइल करने लगी थी और उसने अरमान के आनंद का भरपूर फायदा उठाया और उसने अरमान की बॉडी को अच्छी तरह से लेक करने के बाद उसने अपने आप ही अरमान को खुद में समा लिया था। और जब तक अनुराधा का अरमान से दिल नहीं भर गया था, तब तक वो अरमान को प्यार करती रही थीं। अरमान बिना किसी मेहनत के उस पल का आनंद ले रहा था और करीब 2 घंटों के बाद अनुराधा थक कर अरमान के ऊपर ही सो चुकी थी। अरमान भी उसी हालत में सो चुका था। अगली सुबह अनुराधा की आंख अरमान से पहले खुल गई थी और वो कल रात की बातों को याद करके अरमान को उसने एक फॉरहेड पर किस कर दिया था। उस किस से अरमान की भी आंख खुल चुकी थी और कल रात क्या हुआ था उसे एक एक करके याद आने लगा था। अरमान को खुद से घिन आने लगी थी। उसने तो जोया के बाद किसी भी लड़की को अपने आसपास तक भटकने भी नहीं दिया था, लेकिन यहाँ तो अनुराधा ने उसके हाथ पैर बांधकर उसके साथ सब कुछ कर लिया था। अरमान को पहली बार अपनी इज्जत लूटी हुई महसूस हो रही थी और आज जाकर उसे जोया के गम, उसकी तकलीफ का पल भर के लिए ख्याल हो आया था। अरमान ने रस्सी खोलने के लिए पूरा जोर लगाने लगा था। गुस्से की वजह से उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। अरमान ने कभी नहीं सोचा था एक मामूली सी लड़की के आगे वो इतना बेबस हो जाएगा। वहीं अनुराधा रात के प्यार के बाद अपने आप को काफी ज्यादा तरोताजा महसूस कर रही थी और वो सीधा किचन में चली गई थी कॉफी बनाने के लिए। अनुराधा ने केवल अरमान की एक शर्ट पहन रखी थी क्योंकि उसने अरमान को उसी के हाउस में किडनैप करके रखा था। अनुराधा को ऐसा लग रहा था मानो उसकी जिंदगी का आज 2 सबसे बड़े मकसद पूरे हो चुके थे, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका एक मकसद पूरा होकर भी फेल हो चुका था, क्योंकि राजवीर ने शमशेर को कब कर रेस्क्यू कर लिया था। अनुराधा का अरमान से बदला पूरा हो चुका था, लेकिन अभी उसका अरमान से भरा नहीं था। इसलिए उसने दो रातें और अरमान के साथ बिताने का फैसला कर लिया था और वो मुस्कुराहट के साथ गुनगुनाती हुई कॉफ़ी बनाने लगी थीं। अनुराधा बार बार अपने जिस्म को सूंघ रही थी। उसे अपने जिस्म के हर हिस्से से अरमान की खुशबू आ रही थी और गुनगुनाते हुए उसकी कॉफ़ी बनकर तैयार थी और उसने दो कप में कॉफ़ी कर ली थी। और जैसे ही वो कॉफ़ी लेकर पलटी, उसके सर पर किसी ने एक कांच की बोतल से वार कर दिया था। अनुराधा का मुंह पूरा खून से सन चुका था।